मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 30 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही मित्रों मैं स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मोनिका, आपका गांव है आहुलाना जिला सोनीपत हरियाणा से, सरोज स्वामी जयपुर राजस्थान से, सायरा खान नई दिल्ली से, कौशल कुमार नवादा बिहार से और विजय टूडू आपका गांव है मकोरा जिला धनबाद झारखंड से। फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे प्री एग्जामिनेशन 2020 की जो प्लानिंग होनी चाहिए उसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। एक खबर न्यूज में आपने सुनी रेडियो न्यूज में कि जो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत है वहां के जंगलों में आग लग गई है, वहां के लोगों को वहां से हटाया गया है और वहां जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। ये खबर आपने सुनी, बहुत ही सामान्य सी खबर है, नो डाउट, कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से कि पूछा जाएगा प्री एग्जामिनेशन में। लेकिन यहां मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा और ये बात मैं कह रहा हूं खासकर जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट हैं। दोस्तों सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी में थोड़ा सा जो एक उसका व्यावहारिक पक्ष होता है वह बहुत मायने रखता है। उसी को ही हम कहते हैं कि बेसिक्स पर आपकी कितनी पकड़ है, विषय को आपने कितना अधिक समझा है। किसी भी विषय को जब हम व्यवहार में ढाल लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उस पर हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है। मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट को याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले भी मैंने एक बात आप सबसे कही थी और उसे मैं दोहरा रहा हूं कि ज्योग्राफी के तहत कुछ आपको लेक्चर्स पृथ्वी की गति, दिन रात, मौसम इनके ऊपर प्रोवाइड किए गए हैं। उसी में आप जो दक्षिण अयनांत और उत्तर अयनांत वाला पॉइंट है आप उसे ध्यान से सुने। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि ये हमारे यहां भी इतनी ठंड पड़ रही है तो वो कौन सा कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि वहां तो गर्मी के दिन है। और मुझे ध्यान आ रहा है कि उस लेक्चर में मैंने स्पेशली उल्लेख किया है इस बात का कि क्या कारण है कि जो क्रिसमस मनाया जाता है वह ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिनों में मनाया जाता है, जबकि आप देखिए कि पूरे यूरोप में तो वह अब ठंड के दिनों में मनाया जाता है। तो खासकर जब हम अवसर को देखते हुए किसी लेक्चर को सुन लेते हैं या उस टॉपिक को किताब से पढ़ लेते हैं तो हमारी जो समझ है उस विषय की वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। दोस्तों एक खबर है जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाई गई है। जो आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं इसमें जो ग्रुप ए की जो सर्विसेज होती हैं उसमें उसकी आप लिस्ट देखेंगे तो आपको मिलेगा इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन पर्सनल सर्विस, इंडियन अकाउंट सर्विस और इसके बाद जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होती हैं, बाद में जो एक अलग से एग्जाम होता है उसमें मैकेनिकल का अलग होता है, इलेक्ट्रिकल सर्विस के लिए अलग भर्ती होती है, तो इस तरीके से अलग अलग सर्विसेज, तो टोटल ग्रुप ए की 8 सर्विसेज होती हैं और उनको मिला करके अब एक कर दिया गया है जिसे नाम दिया गया है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। पहली बात तो ये आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए एक सामान्य सी सूचना है। दूसरी ये कि आप इस तथ्य का इस्तेमाल अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं खासकर मेन एग्जामिनेशन के। देखिए हुआ क्या कि ये 8 सर्विसेज हैं, है तो रेलवे से ही जुड़ी हुई लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता और कोऑर्डिनेशन न हो पाने के कारण जो बहुत अच्छे तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ये उदाहरण पेश किया है एक रेलवे मंत्रालय ने, आप कह लीजिए इन सर्विसेज को मर्ज करके एक सर्विस बना दी है तो इससे उम्मीद की जा रही है कि सर्विस जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके बीच में बहुत अच्छा तालमेल बैठ पाएगा और काम भी बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो केवल इस तथ्य को याद दिलाने के लिए या कह लीजिए कि स्पष्ट करने के लिए मैंने इस न्यूज को आज आपके सामने रखा है। मित्रों शनिवार की खबर थी कि जो मिग हमारा 27 है उसे विदाई दे दी गई है, उसे टाटा कह दिया गया है, उसे बाय बाय कह दिया गया। मिग 27 ये 1980 के आसपास रूस से लिए गए थे, रूस से, याद रखिए। कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कारगिल युद्ध में जो हमारे MiG-27 ने कमाल किया था, तो इसके बाद इसे बहादुर कहा जाने लगा था, यानी कि जो बहादुर उपनाम है वो MiG-27 का है, राइट। अब ठीक है, देखिए टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती रहती है। बीच में आपने अखबारों में कई बार पढ़ा होगा कि मिग में काफी दुर्घटनाएं होने लगी हैं, तो अब इसे विदाई दे दी गई है और हमारे पास अब जो दूसरा इसको रिप्लेस करने के लिए जो बेड़ा है वो तैयार है, तेजस, जो हम भारत में खुद बना रहे हैं, हमारा स्वदेशी विमान। इसके बाद सुखोई जो रूस से लिए जा रहे हैं, तो ये जो तेजस और सुखोई जो फाइटर प्लेन है हमारे, वो एक तरीके से यूं कह लीजिए कि अब मिग का स्थान लेंगे। और वैसे भी अब जो मिग प्लेन है, फाइटर प्लेन है, अब वो दुनिया के शायद ही किसी देश के विमान के वायुसेना के बेड़े में हो। एक जो दूसरी खबर है फ्रेंड्स, वो है कोनेरू हम्पी को लेकर के। ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो दूसरे एग्जामिनेशन होते हैं उनमें आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं। कोनेरू हम्पी ने अभी विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। और ध्यान रखिए कि इस चैंपियनशिप को जीतने वाली वो भारत की पहली महिला है, लेकिन दूसरी खिलाड़ी है। महिला के रूप में पहली है, भारतीय के रूप में दूसरी है, क्योंकि इससे पहले विश्वनाथ आनंद इस मैच को जीत चुके हैं। एक खबर आपने सुनी कि हेमंत सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। मित्रों, यहाँ समय नहीं है कि मैं इस तथ्य पर प्रकाश डाल सकूं, कभी अवसर मिला तो मैं जरूर इस पर बात करना चाहूंगा कि हमारे दो अभी सबसे इम्पोर्टेंट, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, एक तो हमारा झारखंड है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, तीन पार्टियों के गठबंधन सरकार है। दूसरे महाराष्ट्र है, जहां तीन पार्टियां वहां भी हैं, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। हरियाणा भी है, जहां भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने मिलकर के सरकार बनाई है। मतलब ये अभी खासकर अगर हम इन तीनों को देखें तो यहां गठबंधन सरकार बनी हुई है। वैसे गठबंधन सरकार और भी है, दूसरे के सहयोग से बनाए गए, लेकिन यहां मैं मेजर तीन को लेकर के चल रहा हूं। और इसमें भी जो मेरा जोर है वो महाराष्ट्र के गठबंधन सरकार पर है। महाराष्ट्र में जो गठबंधन हुआ है, देखिए शिवसेना और इधर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो सिद्धांत हैं वो तो काफी कुछ एक जैसे हैं, लेकिन शिवसेना के जो सिद्धांत हैं वो तो इन दोनों पार्टियों के बिल्कुल विपरीत है, या कह लीजिए कि दोनों राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से अलग अलग है, बिल्कुल दो अलग अलग छोर पर है और इनका गठबंधन बना है। दोस्तों, अगर ये गठबंधन सरकार कामयाब होती है तो यूं कह लीजिए कि ये भारतीय राजनीति के इतिहास में एकदम से नए अध्याय की शुरुआत होगी। एक अच्छी बात यह है कि अभी सीएए को लेकर के लग रहा था कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में विवाद की स्थिति बनेगी, लेकिन वो विवाद सुलझ गया। अब देखते हैं कि ये सरकार कैसे आगे बढ़ती है, इसको थोड़ा सा आप वॉच करते रहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है, इस पे अगर और कोई आगे डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली मैं उस पर बात करूंगा। अब आता हूं मैं मुख्य विषय पर मित्रों, प्री 2020 प्री की योजना। देखिए 2020 में आप एंटर करने वाले हैं। मैं जब योजना की बात कर रहा हूं तो मेरे सामने धर्म संकट यह है कि मैं किन की योजना की बात करूं, क्योंकि योजना सबकी एक जैसी नहीं होती। कुछ स्टूडेंट की ये योजना हो सकती है कि चलो इस बार बैठ करके अनुभव लेते हैं कि प्री एग्जामिनेशन होता क्या है, हमारी तैयारी किस स्तर की है, तो वो केवल अनुभव के लिए बैठ रहे हैं, उनके दिमाग में सेलेक्ट होने की कोई धारणा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, वो अपने ढंग से सही कर रहे हैं, उनकी अपने अपनी प्लानिंग है। दूसरे वे हो सकते हैं जो सोच कर बैठ रहे हैं कि चलो प्री हम क्वालिफाई कर लें, इसके बाद मेंस के बारे में देखा जाएगा, यानी कि वो प्री क्वालिफाई करने के लिए बैठ रहे हैं, बस केवल प्री। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिन्हें मैं रियल स्टूडेंट कहना चाहूंगा, उनका मानना है कि नहीं, मुझे प्री, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ही क्वालिफाई करना है। देखिए इसमें सही कौन है, गलत कौन है, मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब आप अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं तो उस लॉन्ग टर्म प्लान में मुझे नहीं मालूम कि आप कहां खड़े हैं, राइट। सामान्य तौर पर मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि जो प्रिपरेशन होती है वो मेन एग्जामिनेशन की ही होती है, प्री की प्रिपरेशन होती ही नहीं है। लेकिन चलिए, अपना अपना दृष्टिकोण है या लोगों के अपने अपने विचार भी हैं, जिस तरीके से लोग आपको गाइड करते होंगे, तो सब आपके अपने अपने देखिए रास्ते हैं। एक ही रास्ता नहीं होता है सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन मेरा रास्ता ये है कि हमें मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, और अगर वो तैयारी हमारी हो गई है तो प्री की तैयारी अपने आप हो जाती है। तो दोस्तों, अब जो मैं एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट जो कहने जा रहा हूं, और चूंकि तीन वर्ग बन चुके हैं, तीनों वर्गों को आपको अलग अलग संबोधित करना होगा, तो मैं मिली जुली बात कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि जैसे ही आप 2020 में एंटर करते हैं, और आप कर ही चुके हैं, तो आपकी जो टोटल प्रिपरेशन है वो प्री ओरिएंटेड हो जानी चाहिए। अभी तक अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे थे तो कोई बात नहीं, उस तैयारी को कंटिन्यू रखिए, लेकिन आपका जो झुकाव है वो प्री की तरफ थोड़ा ज्यादा हो जाए। मई लास्ट में आपके एग्जाम हैं, तो अप्रैल और मई, और स्पेशली मई का महीना आपको केवल रिवीजन के लिए रख देना चाहिए। एक महीने रिवीजन करना है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, मई में आपको केवल यही करना है। इसका मतलब है कि अप्रैल तक आपका जो सिलेबस है, आपको जो पढ़ना है, आपको जो नोट्स बनाने हैं, जो कुछ भी प्री के लिए आपने सोच रखा है कि मेरी ये जरूरतें हैं, वो सारी जरूरतें आपको पूरी कर लेनी चाहिए। इसके लिए आपके पास अप्रैल तक का समय है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपके पास 4 महीने हैं। अब इन 4 महीनों में मैं चाहूंगा कि आप जो 4 बहुत मुख्य विषय हैं, जो स्तंभ हैं, आप 4 महीनों में बांट दें कि इस महीने में मुझे अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, इस महीने में मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, इस महीने में मुझे अपनी इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी है, और इस महीने में मुझे अपना पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करना है। पॉलिटिकल साइंस को आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट एक महीना दें। हाँ, जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, जो इकोनॉमिक्स है, आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको केवल प्री को देखते हुए ज्यादातर जो जोर देना चाहिए वो फ्रीडम मूवमेंट पर देना चाहिए, बाकी पर थोड़ा बहुत आप ध्यान दे दीजिए। इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस को छोड़कर, जो मैंने रेस्ट ऑफ द 3 सब्जेक्ट बताए हैं, उनके साथ साथ आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी लेकर के चल सकते हैं। जैसे एनवायरनमेंट पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके साथ एनवायरनमेंट को जोड़ लीजिए, करंट अफेयर्स को आप जोड़ ही लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ लें, आपके आर्ट कल्चर पर आ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, तो उसको किसी इन 3 सब्जेक्ट्स में से एक के साथ जोड़ लें फीलर के रूप में, और इस तरीके से अपने 4 महीने का आपको बहुत ही एक ठोस प्लान तैयार कर लेना चाहिए। और केवल प्लान ही तैयार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर पूरी दृढ़ता के साथ अमल भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि बजाय इसके कि आप टेम्परेरी तरीके से तैयारी करें या ट्रेंडम तरीके से तैयारी करें, यानी कि अस्त व्यस्तता के साथ कि कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, अभी तक अगर आप ऐसा कर रहे होंगे तो चलिए कोई बात नहीं, है ना, सबके पास पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने दिमाग की संरचना होती है। लेकिन अब मैं जरूर आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब जो 5 महीने का समय प्री एग्जामिनेशन के लिए बच गया है, उसे अब आप व्यवस्थित रूप से उपयोग में लाएं, क्योंकि जब हम किसी काम को व्यवस्थित रूप से करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में भी, हमारे दिमाग में भी वह बात व्यवस्थित रूप से बैठती चली जाती है, और आप पाएंगे कि इससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत अधिक मदद मिलेगी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। आज के करंट कंटेंट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड किया जा रहा है, एक विवेकपूर्ण संतुलन, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, सोली सोराब जी का आर्टिकल है, वो हमारी जुडिशरी को लेकर के है, वो आप जरूर पढ़िएगा, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उन्हें नोट भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूं, जिनकी संख्या एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि नहीं के बराबर है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, तन्मय कश्यप मुजफ्फरपुर बिहार से, दानिश इकबाल झांसी उत्तर प्रदेश से, अमन कुमार, आशु जायसवाल, प्रीतु ठाकुर और अलका चंदर पंजाब से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।